તારીખ 13/1/1998 શ્રી મદ્રાસ ચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 254.
सम्यक दर्शन के निवास के सर्वोत्कृष्ट स्थानक ऐसे 6 पद का ये पत्र है. 2 पद का विषय 2 दिन के स्वाध्याय में चला है. इसका संक्षेप वो है कि आत्मा है यानी मैं हूं, वो अपने चैतन्य सत्ता का अनुभव करके प्रमाण करना चाहिए. प्रमाण करना माने मान्य करना चाहिए, विशेष रूप से मान्य करना चाहिए, उसको कहते हैं प्रमाण करना. प्रो मैंने विशेष, मान मैंने नाप करके स्वीकार करना, उसको कहते हैं प्रमाण. तो अपने स्वपर प्रकाशक चैतन्य सत्ता है ऐसा मेरा अस्तित्व है और वो अस्तित्व स्वरूप मैं हूं ऐसा अनुभव करना, यही आत्मा है उसको प्रमाण किया. और ऐसा प्रमाण स्वानुभव के काल में सम्यक दर्शन करता है, इसलिए सम्यक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट स्थान है. दूसरा पद है आत्मा नित्य है. तो मैं हमेशा हमेशा रहने वाला हूं, मेरा अस्तित्व आत्मा है ऐसे लिया ना, तो है मैं अस्तित्व है, मौजूदगी है. तो मेरी मौजूदगी कैसी है कि मैं अपने को देखता हूं तो मेरा सातत्य मुझे अनुभव में आता है. सातत्य मैंने क्या, सतत पड़ा. जैसा चैतन्य सत्ता में ज्ञान है तो ज्ञान को हम बंद नहीं कर सकते. ज्ञान बंद हम तो बंद नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा बंद कर सकते हैं, वो बात तो होती नहीं. संयोग सब पलटते हैं, रागादि विभाव सब पलटते हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप में ज्ञान स्वरूप ही हमेशा हमेशा रहता हूं. ऐसा मेरा सतत बना, मेरी शाश्वत, मेरा शाश्वत अस्तित्व को प्रदर्शित करता है, इसलिए मैं नित्य हूं. और जब मैं नित्य हूं तो मेरा नाश होने वाला है नहीं. स्वानुभव में अनुभव तो वर्तमान क्षण पूर्ता ही होता है. क्षण क्या, क्षणार्ध है वो तो, क्षण का भी एक अंश है जिसमें स्वानुभव और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है निर्विकल्प दशा में. लेकिन ज्ञान त्रिकाली का हो जाता है, अनुभव क्षणवर्ती और ज्ञान त्रिकाली का. ये इस स्वानुभव का चमत्कार है, स्वानुभूति की चमत्कृति है. वैसे ही ज्ञान एक चमत्कारी पदार्थ ही है. कैसे कि हमारे आंख में देखने की जो जगह है वो तो चना की दाल जितना ही पोर्शन है. कितना एरिया है चना का, जितना दाल है ना, मोतिया नहीं निकलता है, उसके पर लग जाता है पूरा का पूरा, तो दिखने का बंद हो जाता है। उतना ही जगह है, लेकिन वो हिमालय को देखते हैं और नाप कर लेते हैं कि इतना फीट है, इतने हजार फुट है। हम सूर्य चंद्र को देखते हैं जो लाखों अरबों योजन दूर है, तारे तारा सूर्य चंद्र, उनको भी देखते हैं इधर से, उनका भी नाप निकालते हैं तो कितना दूर है, कितना बड़ा है। तो वहां गए बिना अपने आप में रहते हुए इतनी जगह में कितना बड़ा दिखने में आता है, ये तो बाह्य ज्ञान है। बाह्य ज्ञान मैंने जिस पर आवरण है ऐसा ज्ञान है, ये पूरा खुला हुआ ज्ञान नहीं है, अंश रूप खुला हुआ है, इसमें इतना बड़ा चमत्कार है। तो जो ज्ञान निरावरण दशा को प्राप्त होता है स्वानुभव के काल में, उसकी जानने की ताकत कितनी कि अपने त्रिकालीय स्वरूप को जाने और अपने अनंत सामर्थ्य को स्वयं के रूप में ग्रहण करके अनुभव करके जाने, उतनी शक्ति उतनी ताकत क्षणार्ध के अनुभव में होती। और जिसको ऐसा अपनी नित्यता का अनुभव होता है स्वानुभव के काल में सम्यक दर्शन में, तब उनका मृत्यु का भय चला जाता है कि मैं शाश्वत इमॉर्टल पदार्थ हूं, कि मेरा नाश होने वाला नहीं है, तो मेरी मृत्यु कभी है ही नहीं। और जिसको मृत्यु का भय नहीं है, इसको फिर किसका भय हो सकता है, क्योंकि तो सभी प्रकार के भय मृत्यु के भय से नीचे धरती के हैं। और शाश्वत होने से मुझे कोई बाधा भी नहीं पहुंचा सकते, इसलिए मैं अव्याबाद स्वरूप हूं। अबाध्य अनुभव जो रहे तेज है जीव स्वरूप, तो मुझे कोई बाधा कोई मुझे किसी की पहुंच नहीं, मेरे ज्ञान में कोई मुझे दखल कर सकता नहीं है, न मुझे कोई बाधा कर सकता, न मुझे कोई मेरा नाश कर सकता। सम्यक दृष्टि को इसकी आधार बुद्धि होती है, स्वरूप की आधार बुद्धि होती है, और इसकी हूंफ आती है। हूंफ को हिंदी में क्या कहते मालूम नहीं है, लेकिन इसको हूंफ, इसकी हूंफ आती है। हूंफ मैंने आधार बुद्धि से जो भाव आता है उसको कहते हैं हूंफ। आधार बुद्धि से कोई भाव होता है औथ, जिसको बोलते हैं औथ बोलते हैं। इसलिए वो अनुभव करने के लिए अपना सात्य का अवलोकन चाहिए, और वो सतत अवलोकन से उसका सातत्य देखने में आता है। तो सतत अवलोकन के लिए अवलोकन टूटे नहीं ऐसी बलवान आत्मकल्याण की भावना चाहिए। वो भावना का उत्थान के लिए आत्मकल्याण पूर्ण आत्मकल्याण का ध्येय चाहिए। ऐसा ध्येय बांधने के लिए अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए वेदना और चिंतना चाहिए। ऐसे पूरी लिंक बैठी हुई है। तो कहने का आशय है, एक दृष्टांत ले ले कि हूंफ क्या चीज होती है। कि एक दरिद्र आदमी होता है, उनको 25-50 लाख मिल जाता है, कुछ नहीं था उसमें से, तो उनको उसके आधार बुद्धि से हूंफ रहती है कि मेरे को कहीं भी अब लंबा हाथ करने का कारण नहीं रहा। मेरे को किसी के साथ दीनता से रहने का कारण नहीं रहा। तो उसके रूप से वो एकदम टाइट हो जाता है, ढीला नहीं रहता। अब ये संपत्ति 150 साल की है, कितनी जितना आयु है उतना, बाकी तो निकम्मी है। इसके लिए तो खुद के लिए तो निकम्मी है। 25-50 साल की बाह्य अनुकूलता की व्यवस्था में हमको किसी की पड़ी नहीं है, दिमाग चढ़ जाता है। चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है? हमको किसी की पड़ी नहीं है, किसी की दरकार हमको नहीं है, हम क्यों किसी की दीनता करें? तुम्हारे पास है कितना भी होगा, लेकिन हमारे पास भी कुछ है, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो अरब पति की दरकार नहीं करेगा, भले 25-50 लाख हो, क्यों? हमको क्या जरूरत है तुम्हारी? हमारी जरूरत के हिसाब से हमारे पास सब कुछ है, ज्यादा है, जरूरत से भी ज्यादा है। 150 साल की व्यवस्था में उतना दिमाग चढ़ता है और उतनी पावर आ जाती है, तो अनंत काल की औथ मिले उसका क्या होता होगा? कि मेरे अनंत गुणों की संपत्ति, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अस्तित्व, अनंत प्रभुत्व आदि अनंत अनंत गुणों के अनंत सामर्थ्य, इसकी औथ मिले तो सम्यक दृष्टि की खुमारी कोई और होती है, इसकी खुमारी कोई और होती है, वो कभी दीनता में नहीं आते। तो ये जो नित्यत्व है, नित्यपना है, ये बहुत बड़ा परिणमन है। इतना बदलाव आता है, रेडिकल चेंज आ जाता है सम्यक दर्शन होते ही। ज्ञान वेदन छे, स्वप्रकाशन मां ज्ञान वेदन छे, अने पर प्रकाशन मां पर पदार्थ नु खाली प्रतिबिंब छे। ज्ञान मां पर पदार्थ नु खाली प्रतिबिंब छे। सांगे आपने સમયસરના સ્વાધ્યાયમાં એક વાત આવી હતી, જરા લઈએ, કે દીપક કા પ્રગટ હોના હોતા હૈ તો દીપક કી જ્યોતિ સે ખુદ દીપક અપને કો જાહેર કરતા હૈ કે મેં એસા હું। જ્યોતિ ઓર ઇસકે પ્રકાશ સે અપના સ્વરૂપ માલૂમ પડતા હૈ। पर उसके प्रकाश में, अंधेरे में नहीं दिखने वाले जो पदार्थ थे वो भी प्रकाशित हो गया। तो दीपक स्वपर प्रकाशक हुआ, अपने को भी जाहिर करता है और अंधेरे में जो नहीं दिखते थे ऐसे दूसरे पदार्थ को भी वो प्रकाशित करता है, प्रकाश में ले आता है कि इधर वो पड़ा है, इधर वो पड़ा है। ऐसे ज्ञान की एक ज्योति है अंदर में, जो हमेशा प्रकट रूप में रहती है, नित्य उदित है। वो अपने आप को भी, अपने अस्तित्व को भी अनुभव में लाने के लिए वही काम में आता है, वही ज्ञान काम में आता है। और दूसरे पदार्थ क्या है क्या नहीं है वो सब भी वही ज्ञान में जानने में आता है। ऐसे स्वपर प्रकाशक चैतन्य सत्ता नित्य है, तो नित्य में तो बहुत हमारी का विषय है। अपनी नित्यता से सभी प्रकार का भय से रहित होकर के, निर्भय होकर के जीता है। और जो निशंक होता है अपने स्वरूप के अनुभव से कि मैं नित्य हूं, वही निर्भय होता है। पर जो निर्भय होता है वही निसंग होता है। 254 पत्र का वही हेडिंग है। ये दो पद का स्वाध्याय हो चुका है, अब तीसरा पद है। आत्मा करता है। किसका? कि अपनी क्रिया का। आत्मा करता है, कुछ करता है तो क्या करता है कि अपने परिणाम को वो करता है। सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न है, जगत के सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न मैंने अपने पावों, अपने भावों, अपने परिणामों को करते रहते हैं। किसी न किसी परिणाम क्रिया सहित ही सर्व पदार्थ देखने में आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, कि सब कुछ में कुछ कुछ में कुछ क्रिया चलती रहती है सभी पदार्थ में। जैसे कोई पदार्थ वैसा का वैसा दिखता है, ऐसा नहीं है। हमने एक कपड़े का थान टाका प्लास्टिक में पैक करके कबाट में रख दिया, 5-10-15 साल के पीछे उसको निकाला और एक नया ताका वही मिलकर आकर के मिलान करते हैं, ये पुराना है ये नया है, ऐसा मालूम पड़ेगा। ये पुरानेपन कहां से आया? कि परमाणु अपने आप परिणमन करता है तो वो पुराना हो ही जाता है, पुराना किया नहीं जाता है, पुराना हो ही जाता है। ऐसे सभी पदार्थ की क्रिया हो ही रही है, तो प्रत्येक पदार्थ अपनी क्रिया को करता है, किसकी? किसी दूसरे की क्रिया कोई दूसरा नहीं करता, क्योंकि सब क्रिया संपन्न है। आत्मा की क्रिया देखो ना, अपने परिणाम में होती है कि नहीं होती है? अपने परिणाम एक से रहते हैं क्या? विचार से समझ में आता है कि विचार बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं। कभी क्या विचार आया, कभी क्या विचार आया, कभी क्या विचार आया। तो अपनी अवस्था भी आत्मा पलटता रहता है वो मालूम पड़ता है। ये तो सूक्ष्म बात हुई। स्थूल रूप से हम कहेंगे कि हम पहले बचपन में बच्चे थे, छोटे, फिर बड़े हो गए, और जो बूढ़े हो गए वो कहेंगे कि हम बूढ़े हो गए। तो अवस्था पलटी कि नहीं पलटी? क्षेत्र से भी अवस्था पलटती है, पलटती है। शक्ल से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, फोटो देखेंगे बचपन में ऐसा दिखता था, बाद में ऐसा दिखता है, बाद में ऐसा दिखता है। वो तो शरीर की अवस्था बदलती है परमाणु की, वैसे आत्मा की भी अवस्था बदलती है। भावों की, क्षेत्र की अवस्था है वो पलटन पलटन करने वाली पर्याय है, वो हमेशा हमेशा पलटती रहती है। भौतिक विज्ञान में आजकल वो समस्या है कि जड़ पदार्थ है वो कैसे पलटते हैं, कौन पलटाते हैं इसको, जबकि वितराग का साइंस ये बोलता है कि वो स्वयं पलटा मारे ऐसी उनमें शक्ति रही है और इसकी पलटन को हम रोक भी नहीं सकते। एक सेकंड के असंख्य में भाग में कितने करोड़ अरब नहीं, बियॉन्ड मैथमेटिक जाना है, एक सेकंड के असंख्य में भाग में पर्याय से पर्याय अंतर पदार्थ हो जाता है, चाहे परमाणु हो चाहे जीव हो। ऐसा वितराग ने अपने सर्वज्ञ शक्ति से केवल ज्ञान में देखा है। एक समय उसको बोलते हैं असंख्य भाग, मैंने एक समय काल का सबसे छोटा यूनिट उसमें पर्याय पलटती है। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड असंख्य हुआ, जैसे ये हम कहते हैं ये पंखा का रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना है, तो वहां तो पर मिनट का यूनिट लगाया जाता है, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका 1500 है, 5000 है, 10000 है, बस इससे तो ज्यादा होता ही नहीं। यहाँ तो इतना रिवॉल्यूशन है परिणमन का, इतना फास्ट रिवॉल्यूशन है कि एक सेकंड में असंख्य बार पलटा मारता है कोई भी पदार्थ, एक सेकंड में असंख्य बार, जो इतनी तेजी से घूमता हो परिणाम का चक्कर, उसमें कोई माथा लगाए तो क्या होगा? जैसे पंखा है, उंगली लगाए तो क्या होगा, माथा लगाए तो क्या होगा? तो परिणाम के चक्कर में माथा लगाएंगे तो माथा फूट जाएगा। सुगंधी जी लिखते हैं क्या, तो परिणाम के चक्कर में अगर माथा लगाया तो माथा फूट जाएगा। वो तो पलटती है, इतनी फास्ट पलटती है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। स्पंदन छे योग गुणनुं परिणमन छे, आत्मामां अनंत गुण छे, एमां एक योग गुण छे, योग योग जेनु नाम, योग गुणना परिणमन ने स्पंदन कहे छे। स्पंदन एटले प्रदेशोनुं हलन चलन थवुं, ध्रुजारी थवी, वाइब्रेशन थवुं, शुं યોગ ગુણ નો પર્યાય છે, એક ગુણ નો પર્યાય। અહીં તો આખા આત્મા પદાર્થ ની વાત લેવું છે, એ યોગ ગુણ જેવા અનંત ગુણ છે, એ બધા ગુણ એક સેકન્ડમાં અસંખ્ય વાર પરિણમે છે, કેમ કે આખો આત્મા એક સેકન્ડમાં અસંખ્ય વાર પરિણમે છે, માટે આ સાયન્સ છે। તો કે એને કોણ કરે છે, परिणमन को कौन करता है? तो पदार्थ स्वयं करता है। स्वयं करता है मतलब कोई दूसरे का कार्य नहीं करता है, और नहीं कर सकता है, न करने की कोई गुंजाइश है, कोई अवकाश है, वस्तु स्थिति ऐसी है। इसलिए दूसरे पदार्थ का कार्य मैंने किया, ऐसे परिणाम को अहंकार बोलने में आता है, अभिमान बोलने में आता है। क्यों? कि वो तो कर ही नहीं सकता, फिर भी ऐसा माना, ऐसा झूठा माना, तो ज्ञान भी झूठ है और श्रद्धा भी झूठ है, और उससे अहम भाव होता है, अभिमान होता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दुर्गुण है, ये कल्पना है, और उसका फल दुख है, कल्पना का फल दुख होता है। कर्म नु बंध कारण, बंध नु थवानुं एक योग पण छे अने एक कषाय छे। આમ તો પાંચ કારણ લીધા છે, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય, યોગ, બંધ, એતવઃ। ઉમા સ્વામીને તત્વા સૂત્રમાં એ સૂત્ર લિખા હૈ કે બંધ કા કારણ કોણ હૈ, બંધ હેતવઃ મને હેતુ, બંધ કે કારણ કોણ હૈ, કે એક તો મિથ્યાત્વ, એક પ્રમાદ, એક કષાય, મિથ્યાત્વ, એક અવિરતિ, ઓર એક યોગ। तो मिथ्यात्व है वो मलिन परिणाम है, अविरति भी मलिन परिणाम है, प्रमाद भी मलिन परिणाम है, कषाय भी मलिन परिणाम है। तो मलिन परिणाम से बंध होता है, और योग है वो मलिन परिणाम नहीं है लेकिन विकृत परिणाम योग गुण का है, उसमें मलिनता नहीं है, विकृति होती है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में भी ये विकृति चालू रहती है, 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली होते हैं, और सिद्धालय में भी वही स्थिति होती है जो अयोगी केवली की होती है, वही। तो सदैव मुक्त होते हैं, वहां भी योग गुण के कारण से एक समय का आश्रय और बंध चालू रहता है परमाणु का, इसलिए उसको बंध का कारण कहा है। लेकिन इससे कोई आत्मा को मलिनता होती है, अशांति होती है, वैसा नहीं होता वहां। और ये भी क्रम सूचक है सूत्र, क्रम पर ध्यान दें तो, कि पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाता है पंचम गुण स्थान में, वृत्ति को देश वृत्ति को प्राप्त होता है परिणाम, फिर प्रमाद सप्तम गुण स्थान में जाता है, पांचवें छठे में अविरति जाता है, और फिर सप्तम गुण स्थान में प्रमाद का नाश होता है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद, फिर संजलन कषाय है वो बारहवें गुण स्थान में जाता है, और तेरहवें गुण स्थान में योग का अंत होता है। इस तरह से क्रम से जाता है, इसकी बंध के कारण भी क्रम से बताए हैं आचार्य ने। ये क्रम का विषय कृपालु देव ने ध्यान खींचा है कि महात्माओं ने बहुत से क्रम लिखे हैं, इसलिए उनको हम नमस्कार करते हैं, ऐसा करके भक्ति भी किया है। नहीं, वो लौकिक शब्द नहीं है। प्रमाद मैंने शिथिलता, पुरुषार्थ की शिथिलता को प्रमाद कहते हैं। जैसे मुनिराज है, वो दीक्षा जब लेते हैं तब एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं हमेशा शुद्धोप योग में रहूंगा, अपने आत्मा में लीन रहने के लिए मैं दीक्षा लिया है, शास्त्र लिखने के लिए नहीं, 28 मूल गुण पालन करने के, पंच महाव्रत पालन करने के लिए नहीं। लेकिन जब इस पुरुषार्थ में शिथिलता आती है तो सीधा क्या है कि दीक्षा लेते ही वो सप्तम गुण स्थान में आते हैं मुनिराज। पहले चौथे या पांचवे में होते हैं, दीक्षा अंगीकार करते वो सप्तम गुण स्थान में आते हैं, फिर शिथिलता आती है सप्तम गुण स्थान के पुरुषार्थ में तो वो छठे गुण स्थान में आते हैं। इसलिए छठे गुण स्थान को प्रमत्त गुण स्थान बोले, और सातवां गुण स्थान का नाम दिया है अप्रमत्त गुण स्थान। तो कहते हैं यहां कि आत्मा करता है, सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न है, किसी न किसी परिणाम क्रिया सहित ही सर्व पदार्थ देखने में आते हैं प्रत्यक्ष। इस प्रकार आत्मा भी क्रिया संपन्न है, तो मैं भी क्रिया संपन्न हूं, वो बात अपने परिणाम की क्रिया से अनुभव गोचर होती है। क्रिया संपन्न है इसलिए करता है, ये क्रिया का वो खुद ही करता है। श्री जिन ने उस कर्तृत्व का त्रिविध विवेचन किया है। आत्मा करता है उसमें तीन प्रकार की बात करने का अभिप्राय है, तो भगवान के नाम से कहते हैं कि जिनेंद्र देव ने ये क्रिया का कर्तृत्व तो मैंने करता पड़ा है, वो त्रिविध मैंने तीन प्रकार से बताया है, दर्शाया है अपने दिव्य ध्वनि में। उसमें पहला प्रकार वो है पारमार्थिक लिया है, कर्तृत्व में पहला प्रकार पारमार्थिक लिया है कि परमार्थ से स्वभाव परिणति द्वारा आत्मा निज स्वरूप का करता है, वो बात पहले स्थापित किया। मैंने पहले स्वभाव को स्थापित किया, फिर विभाव को दिखाएंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन में ऐसा क्यों किया, पहले वो बात क्यों किया, इस सम्यक दर्शन का विषय स्वभाव है, और ये पद का कहने के पीछे अभिप्राय सम्यक दर्शन सब दर्शन का निवास स्थान दिखाना है। तो आत्मा करता है ये बात खास पर्टिकुलर पॉइंट पर चल रही है कि सम्यक दर्शन का निवास हो कैसे, इस व्यू पॉइंट से इसी उद्देश्य को लेकर के ये बात चलती है। तो तो आत्मा अपने परिणाम का करता है, उसका तीन प्रकार है। तो सबसे पहला प्रकार है वो स्वाभाविक पारमार्थिक यानी निश्चय रूप यानी वास्तविक, ये सब एक अर्थ है। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव अपने स्वभाव परिणति द्वारा निज स्वरूप जैसा है वैसा ही परिणमन करने का, करता होने का इसका स्वभाव है, ये इसका मूल स्वभाव है। अब थोड़ी सूक्ष्म बात इसमें विचारने लायक है, वो है कि स्वभाव है वो सामर्थ्य रूप है, स्वभाव है वो शक्ति रूप है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर रूप है, जैसे स्वभाव है वो पावर रूप है शक्ति रूप है, जैसे दीवा सलाई में अग्नि शक्ति रूप है, चकमक के पत्थर में अग्नि शक्ति रूप है, लेकिन खुद परिणमन रूप नहीं है स्वभाव। बात थोड़ी सूक्ष्म है, स्वभाव खुद परिणमन रूप नहीं है, लेकिन उसका परिणमन करने का जो स्वभाव की शक्ति है उसके द्वारा उसको समझाया जाता है। जैसे शुक्ति तो का वर्णन समय साल में अमृत चंद्र आचार्य ने परिशिष्ट में किया है, परिशिष्ट में वो बात चली, तो उसमें एक बार ये प्रकाश शक्ति है, तो उसमें क्या लिखा है कि विशद विशद मैंने स्पष्ट, विशद मैंने चोखा स्पष्ट, विशद स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति, तीन शब्द दो शब्द में उसके उसको डेफिनेशन दिया है, विशद स्वसंवेदनमयी नाम है उसका प्रकाश शक्ति। तो प्रकाश शक्ति जो है वो संवेदन रूप परिणमन करती है, इसलिए आत्मा को स्वप्रकाशक में स्वसंवेदन लिया है। ठीक है, कि जो आत्मा की एक शक्ति है जिसका नाम प्रकाश शक्ति है, वो तो स्पष्ट स्वसंवेदनमय है पावर रूप, लेकिन उसका जो परिणमन व्यक्त होता है शक्ति की व्यक्ति होती है तो उसका स्वसंवेदन प्रकट होता है, मैंने अपने आप को अनुभव करना, अपने आप को भोगना, ये इसका काम है, वेदन करना, अनुभव करना, भोगना और ग्रहण करना, ये चारों एकार्थ शब्द हैं। तो अपने आप को वो ग्रहण करती है, अपने आप को वेदन करती है, अपने आप को भोगती है, अपने आप को अनुभव करती है। तो वेदन से स्वसंवेदन से वो प्रकाश शक्ति को समझाई जाती है, क्योंकि तो शक्ति तो शक्ति है, ऐसी अनंत शक्ति है, हरेक का परिणमन करने का अलग अलग प्रकार है, तो उसका परिणमन के प्रकार से इस शक्ति को अलग समझाई जाती है। शक्ति तो शक्ति है, पावर है, ऐसे अनंत प्रकार का पावर एक आत्मा में भरा है। अब देखें फिर से कि परमार्थ से स्वभाव परिणति द्वारा आत्मा निज स्वरूप का कर्ता है, तो कर्ता नाम की भी एक शक्ति है। क्या आत्मा में जो अनंत शक्ति है, 47 शक्ति में कर्ताकरण संप्रदान अपादान और अधिकरण 6 शक्ति लिया है, 47 शक्ति में ये 6 शक्ति भी लिया है, आखिर में 40 शक्ति से लिया है कर्ता कर्म करण, तो कर्ता नाम की शक्ति है, अनंत शक्ति में एक साथ था। ये तो 47 बताई है, डेफिनेशन 47 की आई है, और अलग अलग शास्त्र में भी अलग अलग शक्तियां का तो व्याख्या आती है। तो गुरुदेव तो बहुत स्वाध्याय करते थे बस शास्त्रों का, बोले कि करीब 110 या 114 शक्ति शास्त्रों में मिलती है, 47 शक्ति तो समय काल में मिलती है, और अनुभव प्रकाश में कुछ दीपचंद जी साहब ने लिखे हैं, और दूसरे दूसरे ग्रंथ में दूसरे दूसरे आचार्यों ने भी कहीं ना कहीं बात किया है अलग अलग शक्ति का, तो सब मिलाते हैं तो 100 से ऊपर 10-15 के बीच में कोई फिगर आता है। अनंत, उतने अनंत हैं कि जिसके नाम भी आजकल तक वाणी में, भगवान की वाणी में प्रसिद्ध नहीं हुआ है। क्यों? कि अनिर्वचनीय है, इसका नाम भी नहीं दे सकते, लेकिन अनंत संख्या से उसको अनंत कहिए, संख्या में अनंत है, और एक एक शक्ति का पावर भी अनंत है। ऐसा आत्मा बहुत बहुत अनंत शक्तिवान पदार्थ है। कैसा है? अनंत शक्तिवान पदार्थ है। जैसा अस्तित्व शक्ति अनंत है, तो हमारी मोदी जी को मिटा नहीं सकते, हमारा अभाव हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकते। क्यों? हमारा अस्तित्व अनंत है, हमको कोई काट नहीं सकते, कोई जला नहीं सकते, कोई पानी में डुबा नहीं सकते, कोई हवा से सुखा नहीं सकते, कोई छेद नहीं सकते, कोई भेद नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही ऐसा है। गुण छे, शक्ति छे, साइंस ने भाषा में एने प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल कहेवामां आवे छे। बधा पदार्थो साइंस ने दृष्टि है, इस सब्सटेंस हैज गॉट इट्स प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को धर्म कहते हैं, तो द्रव्य का भी अनंत धर्म है, एक एक गुण का भी अनंत धर्म है, और एक एक पर्याय का भी अनंत धर्म है, तो सब कैरेक्टर्स में जाता है। और शक्ति है वो पदार्थ के गुण है, और पर्याय है वो पदार्थ, वो इसकी अवस्था है, जो उत्पन्न होती है, व्यय होती है, एक सेकंड में असंख्य बार, एक सेकंड में असंख्य बार। ये साइंटिफिक पोजीशन है, हमको तो इससे परमार्थ निकालना है कि इससे हमारी सुख शांति कैसे हो, और हमारा दुख का और आकुलता का अभाव कैसे हो, हमारा जन्म मरण का अभाव कैसे हो, हमारा टेंशन का अभाव कैसे हो, हमारा सभी प्रकार का क्लेश और दुख कैसे मिटे, वही हमारा प्रयोजन है, यानी वही हमारा स्वार्थ है, और वही परमार्थ है, वो स्वार्थ है, वही परमार्थ है। स्वार्थ मैंने स्व अर्थ, मैंने निज प्रयोजन। तो कहते हैं कि परमार्थ से श्री जीन ने स्वभाव परिणति द्वारा आत्मा निज स्वरूप का करता है, मैंने अपने स्वभाव रूप परिणाम को करता है, ऐसा ही इसका स्वभाव है। विभाव करने का इसका स्वभाव नहीं है, ये बात है। विभाव करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव तो परिणाम में स्वभाव विरुद्ध प्रक्रिया एक पैदा होती है, इसको विपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विपत्ति भी कहते हैं और आपत्ति भी कहते हैं। लेकिन स्वभाव स्वरूप परिणमन करना, स्वभाव स्वरूप परिणमन करना, वो तो हमारी संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी का भान होने से वो स्वभाव रूप परिणमन होता है। वो बात कृपालु देव ने 710 नंबर का पत्र किया। 710 नंबर के पत्र में कितने सूत्र हैं, सूत्र रूप सारा पत्र है। इसमें एक बहुत बढ़िया बात किया, एक बढ़िया नहीं किया है, बहुत सी बढ़िया बात किया है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, बढ़िया है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह नंबर का सूत्र है। समझिए एक सूत्र में पूरा पत्र लिखा है, हिंदी में है 527 पेज, गुजराती में है 520 नंबर का पेज मिला, 520 देखो उसमें ऊपर से 13 नंबर का है। भान होने पर स्वभाव परिणामी है, क्या लिखा है, सम्यक दर्शन में स्वरूप का भान होता है कि मैं ऐसा हूं, तो भान होते ही स्वभाव का परिणमन चालू हो जाए, ऐसा इनका स्वभाव है। स्वभाव तो स्वभाव ही है और स्वभाव रूप परिणमन करने का स्वभाव है, लेकिन कब, तो भान होने पर। तो ये विकार विकृति विभाव विपत्ति आपत्ति कब है, बेभान होने पर। अपने स्वरूप से बेभान होने से मैं फलाना फलाना मैं आत्मा नहीं रहा, मैं फलाना फलाना मैं अपनी बेभानता आई, तो उसमें उस वक्त तो विभाव परिणामी है। जैसे मैं मनुष्य हूं वो तो कर्म जनित अवस्था है, आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। कुछ कर्म ऐसे के हुए कि जिसके फल स्वरूप वो मनुष्य परिवार कुछ काल तक उसका पीरियड है वहां तक वो चलती है रहती है। तो उसमें हमने मान लिया कि बस मैं तो वैसा ही हूं, मैं तो हमेशा उसके लिए मनुष्य हूं, मनुष्य जैसे मिटने वाला मरने वाला ही नहीं हूं ऐसा मान करके प्रवृत्ति करता है जी। अनित्यता में अनित्यता छापे से, स्वभाव नित्य होने से अनित्यता में वो नित्यता की भ्रांति उसको होती है, स्वभाव सुख रूप होने से दुख में सुख की भ्रांति होती है, और स्वभाव ज्ञान रूप होने से अज्ञान में ज्ञान की भ्रांति होती है। स्वभाव के कारण से है, बहुत सी बातें ऐसी है। तो भान होने से स्वभाव परिणामी है, ये बात यहां अंडरस्टूड है। जो 710 में जो बात गई वो इधर अंडरस्टूड है कि आत्मा परमार्थ से स्वभाव परिणति द्वारा आत्मा निस्वरूप का करता है, लेकिन निस्वरूप का करता कब होएगा, क्योंकि ये बात तो पढ़ते हुए ऐसा लगेगा तो अगर आत्मा स्वभाव से निज परिणति का जो करता है तो मेरे का तो मेरे को तो स्वभाव रूप निज स्वरूप का तो प्रकट परिणमन नहीं हो रहा है, मुझे तो राग द्वेष क्रोध मोह माया ये सब हो रहा है। तो कहने वो भान होने से होता है, भान होने से स्वभाव परिणामी है, बेभानपणे में वो स्वभाव परिणामी नहीं है। अनुपचरित, अनुपचरित यानी अनुभव में आने योग्य विशेष संबंध सहित व्यवहार से यह आत्मा द्रव्य कर्म का करता है और उपचार से घर नगर आदि का करता है। एक दूसरा प्रकार लिया द्रव्य कर्म का कर्तापना का, और तीसरा प्रकार लिया बाह्य पदार्थों का कर्तापना का। तीन बात गुरुदेव ने लिया है उसमें ज्ञान की बहुत विशेषता है, कृपा गुरुदेव के ज्ञान की विशेषता वो है कि वो आखिर के पद में मोक्ष मार्ग को दिखाना चाहते हैं। तो छठा पद है भोक्ता भी है और मोक्ष पद भी है पांचवा, और छठा पद मोक्ष का उपाय भी है। तो उपाय के विषय में वो रहस्य खोलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ कर्तापने में, क्योंकि मोक्ष का उपाय कार्य है, क्या है मोक्ष का उपाय कार्य है, तो ये कर्तापना और मोक्ष का उपाय दो विषयों का अनुसंधान है आपस में। तो कर्तापना का निरूपण में मोक्ष का उपाय को अच्छी तरह बताने के लिए उन्होंने ये बात तीन पने का, तीन प्रकार के कर्तापने का निरूपण किया है। पढ़िए थोड़ा, फिर उसमें चर्चा तो जब आएगा तब करेंगे। देखो क्या लिखते हैं मोक्ष का उपाय में, कि यदि कभी ऐसा हो कि कर्ममंद मात्र हुआ करे तो उसकी किसी काल में तो उसकी निवृत्ति किसी काल में संभव नहीं, यानी कर्म बांधने का स्वभाव होए तो कर्म का नाश हो ही नहीं, परंतु कर्म बंध से विपरीत स्वभाव वाले ज्ञान दर्शन समाधि वैराग भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष है, जिन साधनों के बल से कर्मबंध शिथिल होता है, उपशांत होता है, क्षीण होता है, इसलिए वे ज्ञान दर्शन संयम आदि मोक्ष पद के उपाय है। तो कर्मबंध वाली बात इसलिए लिया है कि जीव को कर्मबंध होता है लेकिन उसका वो स्वभाव नहीं है, कर्मबंध होता है वो बात व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। तो व्यवहार दो के बीच में होता है, एक खुद एक और दूसरा पदार्थ, दोनों की अवस्था कोई ऐसी है कि जिसको दिखाने के लिए व्यवहार से कहना पड़ता है कि आत्मा कर्मों को बांधता है। ये कथा आत्मसिद्धि में भी है, उसमें भी बहुत गुड़ बात है कि ग्रह रूपी रूपी ने ये अचरज निवात जीव बंधन जाने नहीं के वो जिन सिद्धांत, कर्म बंध का सिद्धांत जिनागम के सिवा कहीं नहीं है। क्यों? ये केवल ज्ञान का विषय है, कर्म के परमाणु छद्मस्थ को तो दिखता ही नहीं, केवल ज्ञान में दिखा इसलिए दिव्य ध्वनि में आया, और दिव्य ध्वनि में आया वो आगम में आया। तो जिनागम के सिवा कर्मबंध का गणित मैंने मैथमेटिक्स एरिथमेटिक कहीं भी नहीं है, कोई भी विश्व के किसी भी संप्रदाय में वो बात नहीं है। वो बात का चैलेंज कर सकते हैं जैन लोग, चैलेंज कर सकते हैं, और कई जर्मन वैज्ञानिक लोग आए थे इंडिया में, और उन लोगों ने जब धवल शास्त्र देखे, सचखंड आगम पर की टीका है, धवल जय धवल और महाधवल करके, ये धवला शास्त्रों का 31 वॉल्यूम है, कितने इतने बड़े बड़े, कुछ मागधी में है कुछ संस्कृत में है। जिनसेन आचार्य ने वो लिखना शुरू किया था, कुछ सुनना सुनने में आया है कि फिर वो उस आयु पूर्ण हो गया, फिर विरसेन आचार्य ने वो चालू किया और 31 वॉल्यूम में वो पूरा किया है। उनको ये षटखंड आगम पर टीका है, षटखंड आगम वो सबसे पहला आगम है जो पुस्तकारूढ़ हुआ, इसके पहले सब मुनि लोग हैं वो ज्ञान में कंठस्थ सब रखते थे, लेकिन षटखंड आगम के जो कर्ता है इनके गुरु है दर्शन आचार्य, तो उसका ज्ञान तो दर्शन आचार्य को था। दर्शन आचार्य को लगा कि अभी पीछे काल में आने वाले मुनि लोग उतने इस बात को ज्ञान में रख सकेंगे नहीं, इसलिए इस ज्ञान को ग्रंथारूढ़ करना जरूरी है। उन्होंने दो आचार्यों को बुलाए, पुष्पदंत और भूतबली करके, उनको वो ज्ञान दिया, वो भी इतने समर्थ है कि इस ज्ञान को धारण कर सके, और उनको आज्ञा की कि आप उसको पुस्तकारूढ़ कीजिए। तो उन्होंने वो ताड़ पत्र पर लिखे हैं वो शास्त्र, और वो षटखंड आगम पूरा हुआ वो जेठ सुद पांचम पूरा हुआ तो सुद पंचमी करके आज भी दक्षिण भारत में उसका महोत्सव होता है। सुद पंचमी में आगमों की पूजा करते हैं वो लोग और वो बड़ा धूमधाम से करते हैं लोग। वो धवला टीका भी आज वहाँ ही है, मुंडबिद्री में है, वो अपन गए थे ना मुंडबिद्री में, वहाँ वो रखी है। अच्छा, बात कहने का वो है कि वो जब देखी जर्मन वैज्ञानिकों ने तो वो लोग आश्चर्य में डूब गए कि ये से मैथमेटिक और बियॉन्ड मैथमेटिक का सब्जेक्ट विश्व में कहीं नहीं है, ऐसे ग्रंथ ऐसा साहित्य विश्व में कहीं नहीं है। पर जब उन्होंने ये देखा कि ये लिखने वाले दिगंबर आचार्य जंगल में बैठे बैठे लिखते थे, हमारे साइंटिस्ट की तरह नहीं थे कि उनको सभी प्रकार की सुविधा दे दे तब वो खोज कर सके, उनको अच्छी लेबोरेटरी चाहिए, एयर कंडीशन सब बात चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, खाना पीना रहना सब, इनके कुटुंब परिवार की सब व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो तब वो काम कर सके। ये लोग कुटुंब परिवार छोड़ करके जंगल में जा करके खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था होवे तो भी इसका त्याग करके जंगल में वो बात लिखी, वो लोग आश्चर्य में डूब गए कि ये लोग बुद्धिमान नहीं है, इंटेलेक्चुअल जायंट्स हैं, ये तो कुछ नहीं कह सकते इसके विषय में। तो ये आज जगत को आज भी चैलेंज कर सकते हैं कि ऐसी करुणानंद का विषय कहीं भी नहीं है, और बहुत सॉलिड बात लिखा है और साथ में कहीं अध्यात्म की बातें भी उन्होंने लिखी है। हाँ, हम दर्शन करके आए, तो दर्शन कराते हैं, आगम दर्शन करके रखते हैं और दिखाते हैं, तालपत्र पर है एकदम। और अभी तो कहे कि तालपत्र को उदय नहीं लगे, दीमक नहीं लगे, इसलिए वो लोग उसको अच्छी तरह केमिकल से वो अपने करते ना, प्लास्टिक के लेमिनेशन करके रखते हैं आजकल, तो उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। मुझे 2000 साल पहले की बात तो ये है, 2000 साल में कागज तो कोई टिकता ही नहीं, 200 साल में कोई भी अच्छे से अच्छा बॉन्ड पेपर खत्म हो जाता है, ताड़पत्र जो हजारों साल तक टिकता है, इतना इसका ड्यूरेबिलिटी इतनी होती है। तो कहते हैं कि अनुपचरित व्यवहार से, क्या अनुपचरित व्यवहार से, अनुपचरित मैंने नजदीक के व्यवहार से, अनुभव कर सके ऐसे व्यवहार से, और विशेष संबंध मैंने खास संबंध वो है कि जीव जैसा भाव करे वैसा ही डिग्री टू डिग्री कर्म उसको बनता है। एक राग का एक परिणाम हुआ, उसमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय ऐसे अलग अलग प्रकृति के कर्म बनेंगे, जैसा भाव है वैसे ही प्रकृति उनको बनेगी, डिग्री टू डिग्री। ये परमाणु का ऐसा ही कोई विभाव स्वभाव है, वो भी इसका स्वभाव स्वभाव नहीं है, वो भी इसका भी ये विभाव स्वभाव है, और ये जीव का भी ये विभाव स्वभाव है। तो विभाव करता है तो परमाणु जो विभाव को प्राप्त हुए हैं कार्मल वर्जना में वो ऐसा ही परिणमन कर देता है। जैसे हम खाते हैं तो खाते हैं तो उसके सप्त धातु में वो परमाणु बढ़ जाएंगे, जो भी पेट में जाएंगे परमाणु खोराक है, चाहे वो मिष्ठान हो, चाहे फल हो, चाहे कुछ भी प्रकार का आहार हो, कुछ कोई भी प्रकार का जो आहार के योग्य परमाणु है जो खाया जाता है वो सब तो धातु में बढ़ जाएंगे। कैसे? अपने आप। परमाणु के विभाव स्वभाव के अनुसार। हम नहीं चाहे कि हमारे नाखून बढ़े, क्यों कभी तो निकम्मी चीज बढ़ता है तो काट करके निकाल देना पड़ता है, लेकिन इसमें हमारी इच्छा नहीं चलती। हम नहीं चाहें कि हमारे बाल बढ़े तो भी बाल हो जाए, और चाहे कि बाल हो जाए तो नहीं हो जाता। तो अपने स्वभाव स्वभाव अनुसार परिणमन करते हैं। ऐसे कर्म प्रकृति का भी ऐसा ही है, इसलिए उनको खास संबंध लिखा। क्या लिखा? विशेष संबंध, स्पेसिफिक संबंध है इसका। खास विशेष मैंने स्पेसिफिक संबंध है और अनुभव में आने योग्य है। इस प्रकार के व्यवहार से, व्यवहार दो प्रकार के हैं, उपचरित भी है और अनुपचरित है। अनुपचरित भी है, अनुपचरित है वो एकदम नजीक का खास होता है, उसको अनुपचरित कहते हैं। अनुपचरित व्यवहार से आत्मा द्रव कर्म का करता है, और उपचार से, उपचरित व्यवहार से, उपचरित व्यवहार हुआ घर नगर आदि का करता है। तो क्या है, उपचरित व्यवहार में वो मात्र कहने की बात है, वास्तव में नहीं है, उसको कहते हैं उपचार। जैसे पड़ोसी को कहते हैं कि ये हमारे चाचा हैं, मामा हैं, वास्तव में हमारे माँ का भाई होता नहीं या पिता का भी भाई होता नहीं, लेकिन कुछ भी कहते हैं तो पड़ोसी के हिसाब से कहते हैं, वो कहने का उपचार है, उपचरित व्यवहार है। वैसे हमने घर बनाया, हमने कपड़ा बनाया, हमने नगर बसाया, हमने ये पुल बांधा, विद्यासागर से तो बांधा ऐसा बांधा, वैसा किया, रेल बनाया, वो किया, वो किया, ट्रेन बनाया, बम बनाया, ये सब उपचार है। आत्मा बना सकता नहीं, क्यों कि ये परमाणु के स्वयं की रचना है, लेकिन कुछ जीवों का योग और उपयोग निमित्त होता है, इसलिए उनको उपचरित उपचार लागू पड़ता है। योग और उपयोग, योग मैंने मन वचन काया का, योग और उपयोग मैंने बुद्धि, दोनों का निमित्त से कुछ कार्य पुद्गल में होता है तो उस कार्य को उपचरित व्यवहार कहने में आता है। ऐसे जिनेंद्र देव ने कर्तापना तीन प्रकार से दर्शाया है। अब हमको परमार्थ पकड़ना है, क्या है सारांश इस पद का, क्या है कि भान होने से स्वभाव परिणामी है। वो बात जो उसके मन में ज्ञान में तो सब बात है, लेकिन सब जगह सब बात तो कहां से लिखने में आए, यहाँ तो कर्तापना का व्यू पॉइंट है। तो स्वभाव से कर्ता परिणामी है, हमको उसको स्वभाव का भान करके अपने निज स्वरूप का परिणमन करना, यही हमारा पारमार्थिक लाभ है, और वो लाभ हमको लेने योग्य है।
भान करने में क्या,
भान करने में क्या है के जैसे कोई दारू पिया, हाँ तो बेभान हो गया, तो क्या भान भूलता है, तो भगता है जैसा कैसा, कुछ भी मारता, मार भी देता है किसी को, गुस्सा की प्रकृति वाला तो मारने लगता है। तो लोग क्या कहते हैं कि वो भान भूला हुआ है। जब नशा उतरता है तो उसको लगता है अरे मैं तो राजा हूं, तो उसको जो अनुचित कोई भी कार्य किया है बेभान पड़े में, उसका उसको पश्चाताप होता है कि मैं राजा होकर के मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसे चला गया, मैं ऐसे बोल दिया, मैं ऐसा गिर गया, मैं इधर चला गया, उधर चला, उसको भान नहीं रहता मैं किधर गया, किधर बोला, क्या हुआ, क्या सोया, कुछ नहीं पता चलता। पर भान होने से उनको ख्याल आता है कि मेरे को उचित ये है, अनुचित वो है। ऐसे आत्मभान होता है तो मैं आत्मा हूं, ऐसा आत्मा हूं, तो उसको उसको कर्तव्य अकर्तव्य का भान रहता है। और बेभान अवस्था में उसको कर्तव्य अकर्तव्य का भान नहीं रहता है, तो उपचार से, अनुपचरित व्यवहार से वो द्रव कर्मों को बंधन करता है, और संसार में परिभ्रमण करके दुख को प्राप्त करता है। तो इसलिए भान होना मैंने जैसा स्वरूप है ऐसा भान में आ जाना, उस समय दर्शन से वो भान होता है। पर निज भान बता आत्मा तो शुद्ध समान से क्या रहे कि वो भान था क्या रहे, नहीं तो जो आत्मा छे ये बात एने माटे लागू पड़ती नहीं।
स्वभाव परिणाम
એટલે શું છે કે સ્વભાવ રૂપ પરિણમન કરવું એવો જ સ્વભાવ છે, એવી જ શક્તિ છે। વિભાવ રૂપ પરિણમન કરવું એવી શક્તિ નથી। જો એવી શક્તિ હોય તો ત્રણેય કાળે વિભાવ થયા જ કરે, કોઈને વિભાવનો નાશ થાય જ નહીં, દુઃખનો નાશ થાય જ નહીં, સંસાર મટે જ નહીં। પણ એ તો વિભાવ છે, એ રોગ છે, એ રોગ છે। શું છે? એમ શરીર છે એમાં તંદુરસ્ત રહેવાની શક્તિ છે, રોગ થાય છે એની એ શક્તિ પ્રતિકાર કરે છે, અને આપણે રેઝિસ્ટન્સ પાવર કહીએ છીએ। શું? કે કોઈ પણ રોગ થાય એટલે એને મટાડે, એની સામે એ રડે, અને ઉજેડો થઈ ગયો હોય તો પછી પોતાની મેળે કેમ બંધ થઈ જાય છે? કે એનો શરીરનો સ્વભાવ જ એવો છે કે આપોઆપ જ રોજ આવે, રોજ આપોઆપ આવે। શું? એક ઓપરેશન કર્યું હોય તો એને રોજ આપોઆપ જ આવે, એના દિવસો લાગે એટલું જ, એને રોજ કઈ ઇન્જેક્શન આપીને આજના જ એક કલાકમાં રોજ કોઈ લાવી દે એવું કઈ બને નહીં, ચાલો પાંચ મિનિટમાં રોજ લાવી દેશો તમને એવી કોઈ દવા ન હોય, એનું સ્વભાવ પરિણામ છે। એવી રીતે આત્મામાં શુદ્ધ રહેવાની, નિર્મળ રહેવાની, નિર્દોષ રહેવાનો સ્વભાવ છે, એ હંમેશા દોષનો પ્રતિકાર કરે છે। એટલા માટે કોન્શિયસ બાઇટ કરે છે દરેકને, એને આ નહીં થવું જોઈએ, આ ખોટું છે, આ બરાબર નથી, કેમ કે સ્વભાવ પ્રતિકાર કરે છે હંમેશા દોષનો, સ્વભાવ નિર્દોષ છે એટલા માટે, એટલે આત્મા સ્વભાવ પરિણામે છે।